तब तब कर निखरेगा जीवन, तब कर बनते देव महान। तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है। जीवन भी क्या है, योग साधना से आए दिल में उदारता। योग साधना से आए दिल में उदारता। तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता। संबंधों का रिश्ता तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता। तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।
ओम शांति। स्वयं परमात्मा की अवतरण भूमि एवं सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा और जगदम्बा माँ की तपोभूमि पर आप विश्व की महान भाग्यवान आत्माएं तपस्या करने पहुंची है, ऐसे मंगल अवसर की आपको कोटि कोटि बधाई हो। और दादियों, बड़ों एवं मधुबन निवासियों की ओर से बारंबार आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस परम सौभाग्य के साथ यह भी हमारा महान सौभाग्य है कि इस योग भट्टी का आरंभ एक ऐसी महान आत्मा के मधुर आशीर्वचनों के साथ होने जा रहा है जिसकी वाणी में स्वर कोकिलासी मधुरता और वचनों में माँ सरस्वती की वीणा की झंकार है, जिनके निर्मल व्यक्तित्व को स्वयं परमात्मा ने पाप हरने वाली हर की पौड़ी की सगना दी है। तो ऐसी बाप दादा की मस्तक मणि, सर्व की प्रिय और माँ सरस्वती का प्रतिरूप आदरणीय राजयोगिनी सिलू दीदी जी का हम एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व का सक्षम परिचय देना माना गागर में सागर को भरना है, वही प्रयास में आपके समक्ष कर रही हूँ। आदरणीय दीदी जी को मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में ही अपने जन्म स्थान मुंबई में परमात्म प्राप्ति का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद मम्मा बाबा और दादियों की दिव्य पालना में पलते हुए लौकिक और अलौकिक पढ़ाई का सुंदर बैलेंस रखते हुए मुंबई विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1969 में आपने अपना समग्र जीवन 21 वर्ष की आयु में मानवता और प्रभु सेवा के लिए समर्पित कर दिया। इसके बाद कुछ वर्ष मुंबई, हैदराबाद, काठमांडू में सेवाओं के अतिरिक्त 1974 से 1976 तक मॉरिशस और कुछ अफ्रीकन देशों में अपनी सेवाओं द्वारा परमात्मा संदेश की लहर फैलाने के बाद 1976 से आप स्थायी रूप से बेहद मधुबन घर में ही अपनी बेहद की सेवाएं दे रहे हैं। आप वरिष्ठ राजयोगा प्रशिक्षिका के रूप में वर्षों से मधुबन होने वाले राजयोग शिविर एवं भट्टियों का सुव्यवस्थित संचालन कर रहे हैं। आप ही वह महान आत्मा है जो पहले पहले बाबा की टेलीविजन की सेवाओं के माध्यम से ईश्वरीय संदेश देने के निमित्त बने और जी टीवी एवं सोनी टीवी चैनल पर आपके वक्तव्य प्रसारित हुए। आज तक भी आपकी आवाज में रिकॉर्ड की गई राजयोग कमेंट्री सभी सेवा केंद्रों पर सुनाई जाती है, जिसे सुनकर भाई बहन गहन आत्म अनुभूति में खो जाते हैं। सरल से सरल शब्दों में ज्ञान की गहरी से गहरी व्याख्या करना आपकी विशिष्टता है। आप एक कुशल अनुवादक भी है। बाप दादा मिलन के समय बाबा के महावाक्यों का बहुत सरल और सटीक इंग्लिश भाषा में अनुवाद करके सुनाने की सेवा भी आप करते आए हैं। आपकी ऐसी अनेक विशेषताओं के लिए स्वयं बाप दादा ने आपको अनेक वरदानों से सुसज्जित किया है। आपकी इंग्लिश भाषा की योग्यता अनुसार बाप दादा ने आपको मधुबन बेहद घर में डबल विदेशी भाई बहनों की सेवा के लिए चुन लिया। तो ऐसी महान योगिनी और अनुभव की धनी दीदी हम सबके बीच में आज उपस्थित थे, जिनके मुखारविंद से आज हम इस डबल लाइट योग साधना तपस्या भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में सुनेंगे और भट्टी के मर्म को समझकर मिले हुए इस समय को पूर्णतः सफल कैसे करें वो सुनेंगे आदरणीय सिलू दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत दूर यूपी कासगंज से आप सभी आए हो मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, बाप दादा की कर्म भूमि, सब दादियों की तपस्या भूमि। ऐसे मधुबन में आप सब भट्टी करने आए हो तो सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से और हमारी तरफ से भी आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज के दिन ताली बजा सकते हैं क्योंकि गीत भी बजे। और जैसे आपने हमारी अरुणा बहन से सुना जो आपका कोऑर्डिनेशन करेगी इस भट्टी का, कि इस भट्टी को शीर्षक दिया है डबल लाइट योग साधना तपस्या भट्टी, तो तो आप सब जैसे ही पहुंचे, आपको अकोमोडेशन मिली, उसी वक्त आपको ये माला पहनाई गई, है ना? सभी के गले में ये माला है, हाँ, ये विजय माला है। अर्थात इस भट्टी में आप विजयी बनेंगे। किस बात पर विजयी बनना है? भट्टी माना पकना, भट्टी माना बदलना, भट्टी माना शुद्ध होना, भट्टी माना सब किचरा खत्म होना, भट्टी माना मजबूत बनना। भट्टी कितने बातों में काम आती है। जैसी जैसी चीज एक भट्टे में पड़ती है या भट्टी में पड़ती है, आग में पड़ती है, वो अपना रूप रंग गुण सब बदल देती है, होता है ना? आप कोयला डालो आग में तो इतना काला कोयला राख बन जाएगा, ग्रे कलर हो जाता है, कालापन खत्म हो जाता है। आप बैंगन आलू टमाटर डालो आग में, उसको सेको तो वो इतनी कठोर होते हैं, वो नरम हो जाते हैं। और आप एक ईंट डालो भट्ठे में तो वो इतनी मजबूत हो जाती है। आप किचरा डालो आग में तो वो कार्बन बन के वो उड़ जाता है। तो जो भी चीज़ भट्ठी में पड़ती है, आग में पड़ती है, वो अपना सब रंग रूप बदल देती है। तो आप भी आए हो इस भट्ठी में अपने आप को परिवर्तन करने। किस बात में परिवर्तन करने? जो भी पुरानी कमियां, कमजोरियां, खामियां, त्रुटियां, जो शब्द कहो, इन सब को खत्म करके एक नया जीवन अनुभव करने। जो 63 जन्मों के पुराने संस्कार हैं, उनको कैसे हमें नष्ट करना है, ऐसा परिवर्तन अपने जीवन में लाना है, जो यहाँ से आप जाएं तो बदल के जाएं। और मधुवन पांडव भवन में तपस्या करना, ये कोई कम भाग्य की निशानी नहीं है। बहुत चाहते हैं हम पांडव भवन में भट्टी करें, लेकिन बहुत थोड़ों को मौका मिलता है। तो आप उन भाग्यशाली आत्माओं में से है जिनको यह मौका मिला है, तो अपने लिए ताली बजाओ। नाम तो बहुतों के आए होंगे, लेकिन ऐन मौके पर कुछ भाई बहनों ने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया होगा कि कोई किसी के घर में मृत्यु हुई है, किसी के घर में शादी हुई है, या जो भी अपना प्रोग्राम कैंसिल किया होगा। और कुछ एक जिनका कोई प्रोग्राम नहीं था, पर ऐन मौके पर उनको टीचर ने खुशखबरी दी कि एक सीट खाली है, किसको चलना है, हाँ, और तैयार हो गए। हो गए ना? तो जो ऐसे तैयार हो गए और पहुंच गए जिनका पहले नाम नहीं था, वो हाथ उठाएं। अच्छा, इतने सारे? अच्छा अच्छा, बाकी जो नहीं आए उनसे उनका थोड़ी हाथ उठवाएंगे, वो तो है ही नहीं। खैर, तो आप सभी पहुंचे तो हम कहते हैं जो पहुंचे वो बहुत 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 भाग्यवान है। हाँ, फिर से ताली बजाओ। तो अगले 4 दिन आप क्या करेंगे, उसकी इंस्ट्रक्शंस तो आपको अरुणा बहन ने दे दिए, सुबह से लेकर के रात्रि तक के जो भी कार्य है वो आपको बता दिया। फिर भी बाहर बोर्ड बाहर लगा हुआ है, वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। रोज का स्वमान क्या होगा, बाबा को पत्र किस रूप में लिखना है, वो सारी सब कुछ लिखा हुआ है। और जैसे भट्टी का नाम है, डबल लाइट योग तपस्या, तो डबल लाइट योग साधना तपस्या भट्टी, तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा लक्ष्य है ना। लोग आकर के पूछते हैं आपकी इतनी बड़ी संस्था है, आपकी संस्था का लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है? तो हमको एक टुक, हम उनको एक टुक जवाब देते हैं। को क्या जवाब देते हैं? यहाँ पर सबका लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, है ना? हमारा क्या है बड़ा लक्ष्य? मनुष्य से देवता बनना। लेकिन मनुष्य से देवता बनने तक ये जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है। वैसे तो कहेंगे मनुष्य से देवता की एक रत्न लागी वार ग्रंथ में आता है कि मनुष्य को देवता बनने में समय नहीं लगता है। ये कहने में तो आता है क्योंकि केवल जो बाबा कहते स्विच ऑन करना है, बस अंधेरा है और स्विच ऑन किया लाइट आ गई। तो इसी प्रकार ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। स्मृति आ गई कि हम तो देवता थे और अब फिर से देवता बनना है, और ये स्मृति आते ही हमारे में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो ये स्मृति विस्मृति का खेल है। मनुष्य से देवता बनना है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति बाबा कहते हैं, एक सेकंड में हम अपने विचारों में परिवर्तन लाते हैं। तो ये सारा खेल परिवर्तन का ही तो है, स्मृति का ही तो है। स्मृति और विस्मृति का ये खेल है। स्मृति आई तो देवता बन गए, विस्मृति हुई तो मनुष्य बन गए। जिसको बाबा कहते हैं सत्यनारायण की कथा या तीजरी की कथा या अमर कथा, सब स्मृति और विस्मृति का खेल है। स्मृति आई कि कथा करनी है तो माला माल हो गए, और विस्मृति हो गई कथा नहीं की तो क्या हुआ, हाँ एकदम कंगाल हो गए। तो इसीलिए वो कौन सी स्मृति, वो फिर भगवान सुनाते हैं। जो आज की बाबा की मुरली थी कि जो ज्ञान यहाँ हमें मिलता है वो कोई वेद शास्त्र ऋषि मुनि उनको भी नहीं मिला है। इसीलिए तो वो नेति नेति कह के गए, वेदों में तो यही है ना, ईश्वर का अंत पाना मुश्किल है। लेकिन बाबा के बच्चों ने उनका अंत पा लिया, हम क्या कहेंगे, अंत पा लिया या नहीं पाया? अभी तक पा लिया। और फिर गीत क्या गाते हैं, पाना था जो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। तो आत्मा इतनी तृप्त हो जाती है, भरपूर हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, जिसके आधार से हमें वो अति इंद्रिय सुख शांति आनंद का अनुभव होता है। क्योंकि सब प्राप्त कर लिया और इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। लेकिन वो जो प्रोसेस है मनुष्य से देवता बनने की, वो फिर बाबा कहते हैं वो रास्ता सहजते सहज भी है और मुश्किलते मुश्किल भी है। है सारा स्मृति विस्मृति का खेल। हनुमान के अंदर वो शक्ति थी, लेकिन उसको स्मृति कोई दिलाए तब वो शक्ति उजागर होती थी। तो उसको जामवंत ने स्मृति दिलाई, अरे हनुमान तुम तो उड़ सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। और कैसे उस ताकत को पहचाना, और जय श्री राम कहकर उड़कर लंका पहुंच गया। तो ये सारा उस प्रकार से खेल है एक सेकंड का। लेकिन उस एक स्मृति के अनुभव के लिए पुरुषार्थ भी बहुत है। इसलिए बाबा कहते हैं सहजते सहज भी है और मुश्किलते मुश्किल भी है। क्योंकि 63 जन्मों की मैल चढ़ी हुई है, और वो इतने 63 जन्मों की मैल उतरना उसमें तो बहुत टाइम चाहिए। सुई पर इतनी जंक लगी हुई है जो ऐसे नहीं कि एक सेकंड में जंक निकल जाएगी, परंतु जैसे ही घासलेट में केरोसिन में डाला उसका काम शुरू हो जाता है, लेकिन पूरा जंक निकल जाए उसमें तो समय लगता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो 63 जन्मों का जो कर्मों का हिसाब किताब है वो यहाँ हमें चुकतू करना है, और उसके लिए बाबा हमें योग सिखाते हैं। ये योग अभी कली योग दिवस मनाया, कली मनाया दो परसों, परसों मनाया। तो योग का वास्तविक अर्थ तो केवल शारीरिक तो है नहीं, लेकिन लोगों ने अधिकतर वो शारीरिक ले लिया है, क्योंकि जो मानसिक है आध्यात्मिक है वो भावनात्मक है उस रूप को तो जानते ही नहीं है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है परमात्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए भौतिक को तो ले लेते हैं प्राणायाम कर देंगे, परंतु जो यम नियम जो जरूरी है उस पर तो ध्यान ही नहीं देते। चलो आसन और प्राणायाम कर देते हैं, लेकिन फिर प्रत्याहार एकदम इंद्रियों को अपने वश में करना, फिर ध्यान धारणा ध्यान और समाधि वो तो पता ही नहीं किसका ध्यान करना, क्योंकि परमात्मा को तो जानते नहीं है, तो फिर अपने श्वास पर ही ध्यान कर देते हैं। अब बाबा कहते हैं श्वास तो नेचुरल है, तो श्वास को थोड़ी गिनती करना है या देखना है, हमें तो परमात्मा को देखना है, शक्ति तो उनसे ही मिलेगी ना। परंतु वो बात न जानने के कारण तो हम कहेंगे वो योग भी अधूरा है, और योग के नाम पर योगा कह देते हैं ना, तो योगा कहने से और ही जैसे अपभ्रंश हो गया, क्योंकि योग शब्द तो युज से आता है, युज माना जोड़ना, तो ये आत्मा परमात्मा का जोड़ है योग, उसको तो उस रूप से लेते नहीं, भले कहते हैं लेकिन मुख्य रूप से तो आसन और प्राणायाम पर ही जोर देते हैं। तो बाबा ने तो हमें और ही कह दिया बच्चे ये आसन प्राणायाम ये हठ योग है, पर राजयोग माना राजाई पाने के लिए हमारा योग, जिसको बाबा राज ऋषि कहते हैं, तो राजा भी बनो और ऋषि भी बनो, छोड़ो कुछ भी नहीं लेकिन फंसो कहीं भी नहीं, छोड़ना भी सहज है और फंसना भी सहज है, परंतु साथ रहते छोड़ना भी नहीं और फंसना भी नहीं ये बहुत मुश्किल है। छोड़ देना तो बहुत सहज है, सन्यासी पर छोड़ दिया घर बार जिम्मेदारियां बाल बच्चे पत्नी सब कुछ सब छोड़ दिया, तो वो छोड़ना भी सहज है, दूरबाज खुशबाज दूर चले गए तो भूल जाएंगे, तो दूरबाज खुशबाज तो छोड़ना भी सहज है और फंसना भी बहुत सहज है ना। बच्चा पैदा होता है कितना मोह चला जाता है उसमें, कोई मरता है तो कितना रोते हैं, तो फंस गए ना, न्यारे प्यारे तो रहे नहीं। तो यहाँ बाबा कहते हैं छोड़ना भी नहीं है, साथ में रहना है और फंसना भी नहीं है, और तीसरा क्या नहीं करना है, नया भी नहीं जोड़ना है, क्योंकि जब फंस जाते हैं तो और नया नया जोड़ना चाहते हैं, 10 दुकान बनाई अभी 11वां दुकान भी चाहिए, हाँ ये कर दिया अभी और चाहिए, 10 लाख मिला अभी और 2 लाख चाहिए, तो 99 के चक्कर में आ जाते, 99 हुआ तो बोला अभी 100 के लिए और करना है, फिर वो और थोड़ा बढ़ गया तो क्या और 2 करना है, तो ये 99 का चक्कर हो जाता है, तो फंस भी गए, बढ़ाया तो और ज़्यादा फंस गए, और ये बाबा कहते फंसना भी नहीं है, तो छोड़ना भी नहीं है जोड़ना भी नहीं है नया और फंसना भी नहीं है, तो क्या करना है, चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देते हैं ना प्रश्न पूछते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं, तो चौथा ऑप्शन क्या है, निभाना है। कौन सा क्या करना है, निभाना है। अब ये निभाना इस शब्द में बहुत गहराई है, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब है, छोड़ के जाएंगे कहाँ। जब तक कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ तब तक छोड़ भी नहीं सकते, और अगर हिसाब किताब पूरा हुआ तो वहाँ रह भी नहीं सकते, है ना। आत्मा का शरीर से और संबंधियों से हिसाब किताब पूरा हुआ, अब उस आत्मा को रोकेंगे तो रुकेगी क्या, एक सेकंड में उड़ गई, तो इसीलिए रोक भी नहीं सकेंगे। और हिसाब किताब है तो आत्मा शरीर छोड़ती भी नहीं है, ऐसे भी होता है। इसीलिए बाबा ने चौथा ऑप्शन दिया है, निभाना है, अंत तक निभाना है। और कैसा जीवन जीना है, कमल फूल समान। तो ब्रह्मा बाबा हमारे लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। बाबा हमेशा कहते हैं फॉलो फादर, तो जो ब्रह्मा बाबा ने किया हमको भी वही करना है। ब्रह्मा बाबा ने अपना परिवार नहीं छोड़ा, है ना। कई कहते थे ना कि ब्रह्मा कुमारियां घरवार छुड़ाती है, ब्रह्मा बाबा कहते मैंने कहाँ छोड़ा है, बाबा की युगल, बाबा के बच्चे यज्ञ में सब साथ में ही थे ना, ऐसे थोड़ी कि कोई वो साथ में नहीं थे और ब्रह्मा बाबा अकेले आ गए, नहीं, सब साथ में थे। और ही अलौकिक परिवार भी जुड़ गया, लौकिक भी था लेकिन अलौकिक भी जुड़ गया, वो सब लौकिक भी अलौकिक बच्चे बन गए, सब बच्चे बन गए। उस दिन बाबा की मुरली थी ना, निर्मल शांता दादी को बाबा ने कहा कि देखो ये लौकिक भी है तो अलौकिक भी है तो पारलौकिक भी है। दादी निर्मल शांता सदा ऐसे कहती थी, थ्री इन वन, एक में तीन। बाबा को देखा वो तो लौकिक पिता था, फिर उसमें अलौकिक पिता भी देखा और पारलौकिक पिता भी देखा, तो इतना नशा था उनको, 3 in 1। तो ये तो सिद्ध की परिवार को छोड़ा तो नहीं, लेकिन परिवार को छोड़ना नहीं है परंतु फंसना भी नहीं है। और उसके लिए बाबा हमको तपस्या कराते हैं। तो तपस्या हमारी ऐसी है जैसे ब्रह्मा बाबा ने की, हमें भी वही तपस्या करनी है। क्या करनी है, हमारी एक्सरसाइज कौन सी है, वो तो एक्सरसाइज हाथ पैर की करते हैं, गर्दन की करते हैं, कमर की करते हैं, नाक की करते हैं, या जो भी वो करते हैं। और यहाँ बाबा कहते हैं तुम्हारी जो एक्सरसाइज है, व्यायाम है, अंदर जाओ, हमें आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, उस आत्मिक स्थिति का अनुभव करो और फिर उस अनुभूति को बाहर शरीर में आके कर्मों में लाओ। तो ये एक्सरसाइज है जिसको बैलेंस कहते हैं, उसमें भी बैलेंस करते हैं ना, तो ये भी एक्सरसाइज है बैलेंस का। अंदर जाओ फिर बाहर आओ, अशरीरी बनो फिर देह में आओ, कर्म करो और बाबा की याद में साथ साथ रहो, तो कर्म योग हो जाता है। फिर भक्ति योग भी हो जाता है, भक्ति माना प्रेम, ईश्वर से सच्चा प्रेम है हमारा, केवल पूजा पाठ नहीं है, पूजा पाठ ही प्रेम नहीं होता है, लेकिन अंदर से सच्चा प्रेम ईश्वर के प्रति, अंदर में वो भावना, वो समर्पण भाव, ये सब अगर है यही सच्ची भक्ति है। हम सब भक्तियाँ उस भगवान की, सब सजनियाँ उस साजन की, सब सीताएँ उस राम की, सब पार्वतियाँ उस शिव की, तो ये जैसे हमारी भावना बनती है तो ऑटोमेटिकली जो समर्पण भाव होता है उसमें हम सब तन मन धन उस एक का ही समझते हैं। फिर बाबा कहते संभालो भले आप, लेकिन ट्रस्टी होके रहो, तो उसमें जो मोह है वो खत्म हो जाता है। साथ में रहते आत्मा को देखते हैं, तो बाबा कहते बीच में ज्ञान की तलवार रहती है, तो आत्मिक स्थिति और शिव बाबा की याद हमें डबल लाइट बनाती है। तो डबल लाइट का मतलब बहुत गहरा है। देवता तो वास्तव में आत्मा अपने अंदर है ही है ना, आत्मा लिंग भी कहते हैं, आत्मा तो है ही पूज्य है ना, शालिग्रामों की पूजा होती है तो आत्मा रूप में तो है ही हम पूज्य। लेकिन उन्होंने क्या गलती कर दी लोग दुनिया वालों ने कि आत्मा पर तो कोई लेपछेप लगता ही नहीं है। तो आत्मा पर कोई लेपछेप लगता ही नहीं है तो चाहे जो कुछ भी पाप करो सब शरीर पर लगता है, और फिर गंगा स्नान करो तो सारे पाप नाश हो जाएंगे, लेकिन आत्मा पर तो लगता है ना। सतो रजो तमो की स्थितियों में ना आत्मा आती है ना, शरीर भी आता है, बचपन की अवस्था सतो है, फिर जवानी वो रजो होती है, फिर तमो होती है बुढ़ापा वो भी है, हर चीज सतो रजो तमो से गुजरती है। परंतु आत्मा सतो रजो तमो किस आधार पर होती है, जब शरीर के संबंध में आती है। आत्मा शरीर के बिना है परम धाम में तो वहां सतो रजो तमो की तो बात ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अभी जो इतनी परत बनती गई विकारों की, विकर्मों की, पापों की, अब उसको उतारना है। जैसे कोई शिल्पकार होता है ना, तो शिल्पकार को एक पत्थर मिलता है, बेढंगा पत्थर, और क्या कहा जाता है कि इस पत्थर में से मूर्ति बनाओ। अब बिल्कुल बेढंगा पत्थर है, कोने निकले हुए, कैसा कैसा पत्थर है, लेकिन उस पत्थर में वो मूर्ति देखता है। क्या देखता है? मूर्ति देखता है। तो ये नहीं कहता है कि कैसे बनाओ, ये तो बेढंगा पत्थर है, परंतु वो अंदर में मूर्ति देखता है। और खाली क्या करना है उसको, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको हटाना है, बस एक्स्ट्रा चीजें हटानी है, बाकी अंदर मूर्ति तो है ही। तो आत्मा तो अपने असली स्वरूप में तो अति शुद्ध है, पवित्र है, प्रेम स्वरूप है, वो तो मैं हूं ही, लेकिन ये पड़त आ गई, ऊपर से जंक लग गया, और बाबा कहते कट कट लग गई, या सोने में खाद पड़ गई, बस वो खाद को निकालना है। सोना तो सच्चा है ही है, और खाद निकलने के लिए आग में डालना है, हथौड़ी और छेनी से उसको आकृति देनी है। तो जो नॉन है ना, जो यूजफुल नहीं है, काम का नहीं है, उसको निकालना है। तो इसलिए विकार आदि में तो थे नहीं, ये तो बाद में आए, तो जो आदि में नहीं थे वो उनको निकालना है। और क्या करना है, और कैसे निकालना है, वही तपस्या से। कैसे तपस्या करेंगे, देही अभिमानी बनकर, जिसमें भी बाबा तीन कदम बताते हैं। पहला कदम है देही अभिमानी बनना, इसलिए शिव बाबा ने सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया। दुनिया वाले भी आत्मा 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 बोलते तो हैं, लेकिन वो आत्म ज्ञान जो सही रूप में है वो तो जानते नहीं है। इसलिए बाबा ने आत्मा का ज्ञान ऐसा हमें दिया है जो हम कदम कदम पर उसका अनुभव कर सकते। मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, तुरंत यहाँ विराजमान हो जाओ, अपने अकाल तख्त पर विराजमान हो जाओ, और अकाल तख्त पर विराजमान होकर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, इंद्रियों को वश में रखो। ये है पहला कदम। फिर आत्मा का ज्ञान मिला तो फिर परमात्मा का मिला, कि इस मन को परमात्मा में लगाओ, नहीं तो दिशाहीन बन गया था मन, इसीलिए व्यर्थ में चला गया था। अब व्यर्थ से छूटने के लिए दिशा बाबा ने दी है कि सब तुम्हारा योग मेरे से हो, मेरे से ही सब संबंध जोड़ो। तो सर्व संबंध एक से जोड़ना है, वो हमारे लिए सहज तब बन सकता है जब आत्मा अभिमानी स्थिति होगी। तो पहला कदम है आत्मा अभिमानी स्थिति, और उसके लिए आत्मा हूँ, और फिर देह में आई, कर्म किया, फिर आत्मा हूँ, ये अपनी एक्सरसाइज करनी है। फिर दूसरा बाबा इसके आगे बाबा क्या कहते हैं, देही अभिमानी आत्मा अभिमानी के बाद फिर दूसरा कदम है विदेही। बाबा विदेही शब्द बहुत यूज करते हैं, तो विदेही का मतलब क्या है? हाँ, जनक राजा के मिसल। राजा जनक ने कुछ भी छोड़ा नहीं, लेकिन उसने बस यही कहा मुझे सेकंड में जीवन मुक्ति चाहिए, सेकंड में जीवन मुक्ति जो मुझे दिला देगा हाँ मैं उसको अपना राज्य भाग्य दूंगा, या जो भी सेकंड में जीवन मुक्ति। तो बड़े बड़े विद्वान आए, बहुत कुछ उन्होंने बताया, लेकिन राजा जनक सब संतुष्ट नहीं हुआ। और फिर किसने उसको ज्ञान दिया? अष्टावक्र ने। वो भी कैसे आया? अष्टावक्र दिखाते ना, अंदर जैसे ही आया तो जो विद्वान पंडित थे वो हंसने लग गए, क्योंकि बड़ा कुरूप शरीर था उसका, आठ जगह से उसको कुंभ थे, तो बड़ा बेढंगा शरीर था, चल भी नहीं पा रहा था ठीक ढंग से। तो वो जो विद्वान पंडित बैठे थे सभा में, वो सब हंसने लगे। तो राजा को क्या कहता है कि ये सब चमार बैठे हैं। सब क्या बैठे हैं? चमार। क्योंकि क्या देख रहे हैं? चमड़ी को देख रहे हैं। तो चमड़ी को देखते सारा दिन चमार क्या करता है? जूते बनाता है ना, तो चमड़ी काम आती है ना। वहाँ कानपुर में तो वो ये गंगा के घाट पर ही इतनी वो चमार चमड़ी की वो सब फैक्ट्री है ना, बहुत फैक्ट्री है ना, अभी बंद हो गई या नहीं हुई? क्योंकि उनका सारा किचरा गंगा में जाता था कानपुर में, से बताते हैं तो जी। हाँ, तो इसीलिए अब वो चमार है। तो राजा ने कहा, राजा तो समझ लिया कि कोई मुझे सेकंड में जीवन मुक्ति तो दे ही नहीं सकता है। तो उसकी कई कहानियां हैं, लेकिन एक प्रसिद्ध कहानी ये है कि राजा आखिर तंग होकर के वापस जा रहा था महल में, तो अष्टावक्र पहुंच गया और उसने कहा मैं आपको सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकता हूँ। तो वो हैरान हो गया, ये कैसा व्यक्ति, ये सेकंड में जीवन मुक्ति क्या देगा? तो वो घोड़े पर चढ़ रहा था राजा, तो एक पांव उसका घोड़े का जो सैडल होता है ना जिस पर पांव रखते हैं उस पर था, दूसरा पैर धरती पर था। तो उसी वक्त अष्टावक्र ने पूछ लिया कि आप अभी कहाँ हो, कहाँ हो? तो उसने कहा मैं घोड़े पर हूँ। तो कहा घोड़े पर एक पैर है पर एक पैर आपका धरती पर है, तो कहाँ हो? तो वो राजा समझ नहीं सका, लेकिन यही कहा कि घोड़े पर भी हूँ और धरती पर भी हूँ। तो अष्टावक्र ने कहा घोड़े पर भी हो और धरती पर भी हो, क्योंकि एक पैर वहाँ है एक पैर धरती पर है, तो दोनों पर हो और दोनों पर नहीं हो, क्योंकि पूरा घोड़े पर तो है नहीं और पूरा धरती पर तो है नहीं, तो घोड़े पर भी है और धरती पर भी है, घोड़े पर भी नहीं है और धरती पर भी नहीं है, है और नहीं है, यही है विदेही अवस्था, है और नहीं है। परिवार में रहते हैं, इतने बड़े महल में रहते हैं राजा जनक, सब कुछ था लेकिन वो न्यारा था, उसको मोह नहीं था उस महल का। कई कितनी कहानियां बता देते हैं ना, सन्यासी एक आया तो सन्यासी ने उसको कहा कि आपका एक सेकंड में जीवन मुक्ति आपको मिली है, परंतु उनको लगा ही तो सन्यासी होना चाहिए, ये तो महल में रहता है। तो राजा जनक ने उनको क्या कहा, अच्छा जाओ मेरा एक दीपक लेके जाओ और पूरा महल का अवलोकन करके आओ, और लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। तो वो तो गया, लेकिन हवा के झोंके आ रहे थे तो बार बार दीपक बुझ रहा था, तो उसने दीपक का को की लौ को बचाया और महल से देख करके आ गया। तो देखा और नहीं देखा बराबर था, देखा भी परंतु ध्यान दीपक पर था। तो कहा महल देखा? तो कहा देखा जरूर, लेकिन ध्यान तो दीपक पर था। तो कहा बस यही विदेही अवस्था है, महल में रहता हूँ लेकिन महल में रहते हुए भी ध्यान किस पर है? अपनी आत्मा पर है। तो इसको कहते हैं विदेही अवस्था। विदेह माना देह में होते हुए जैसे देह में नहीं है, संसार में रहते हुए संसार में नहीं है, और उसी का उदाहरण है कमल का फूल। कमल का फूल कीचड़ में है लेकिन कीचड़ उसको छू नहीं सकती, कीचड़ से वो अलिप्त है। तो बाबा भी हमारा जीवन कमल फूल समान बनाते हैं, छोड़ो कुछ भी नहीं, फंसना बिल्कुल नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, अगर है मेरा तो सब कुछ मेरा है, नहीं तो मेरा कुछ भी नहीं है, है ना, सब कुछ मेरा है। ऐसे नहीं कि मेरा कुछ भी नहीं केवल है, केवल फलाना है। किसी ने भाषण करते समय कहा कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों सिवाय एक के, सिवाय एक के, तो सिवाय एक माना उसकी पत्नी बैठी होगी, तो उसकी पत्नी वो तो बहन नहीं है ना, वो तो पत्नी है, चलो बाकी सब भाई बहन है। तो पहले तो उसने ऐसे भाषण किया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो उसकी पत्नी नाराज हो गई, भाइयों और बहनों में तुम्हारी बहन हो क्या तो फिर उसने अपने आप को करेक्ट किया, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों सिवाय एक के किसी ने कहा मुझे सबसे प्यार है, सबसे प्यार है सिवाय मेरे पड़ोसी के पड़ोसी से नफरत है, क्योंकि पड़ोसी ईर्ष्या करता है ना, तो इसीलिए पड़ोसी से नहीं। अगर सबसे प्यार है तो पड़ोसी से भी तो होना चाहिए ना, सबसे होना चाहिए। तो इसीलिए ये विदेही स्थिति है, विदेही स्थिति माना छोड़ना कुछ भी नहीं, सब कुछ करना, करते हुए न्यारा रहना। और उसकी युक्ति क्या है जो मम्मा के सदा कहती थी, हर वक्त समझो मेरा आज ये अंतिम दिन है। मम्मा से किसी ने पूछा ना कि मम्मा मैं तीव्र पुरुषार्थ कैसे करूं, तो मम्मा ने कहा कि हर वक्त यही समझो मेरी अंतिम घड़ी है। अब अंतिम घड़ी है तो क्या करेगा, मेरा 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 करेगा क्या, अंतिम घड़ी माना सब छोड़ना है। तो हर वक्त सोचो मेरी अंतिम घड़ी है, तो बुद्धि सहज न्यारी हो जाएगी। तो विदेही अवस्था, और उसकी अपनी परीक्षा लेनी है कि अगर मैं इस समय शरीर छोड़ती हूँ मानो, या शरीर छोड़ता हूँ, तो मुझे कौन याद आएगा, ये अपनी परीक्षा लेनी होती है। मैं आत्मा बस शरीर छोड़ रही हूँ तो मुझे कौन याद आ रहा है, देह याद आ रही है, बच्चा याद आ रहा है, वो कोई व्यक्ति वस्तु वैभव, कितनी चीजें याद आती है। कई कहते हैं ना बहुत व्यर्थ संकल्प आते हैं, तो व्यर्थ संकल्प कौन से होते हैं, व्यर्थ संकल्प में क्या क्या संकल्प आते हैं, कभी वो देखा है व्यर्थ संकल्प में क्या क्या याद आता है, इसकी भी परीक्षण होनी चाहिए ना। तो व्यर्थ संकल्प में व्यक्ति याद आएगा, उसने मुझे ऐसे कहा, उसने ये किया वो हुआ ये हुआ, तो व्यक्ति याद आया, कोई व्यक्ति सामने आ गया, फिर कोई या तो वस्तु याद आ गई है ना, वस्तु याद आ गई, या कोई वैभव याद आ गया, मेरा धन दौलत मकान जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, तो वो याद आ गया, या तो कोई घटना याद आ गई, 10 साल पहले ये ऐसे हुआ था, वो दृश्य सामने आ गया, कोई परिस्थिति सामने आ गई, यही बातें आती है ना व्यर्थ संकल्पों में, क्या क्या आता है, यही बातें होती है। लेकिन जब ये बुद्धि में आया मेरा कुछ भी नहीं है, तो फिर व्यर्थ संकल्प क्यों आएंगे, वो मैं और मेरा। इसीलिए बाबा कहते हैं ये दो शब्द खत्म करो, मैं कहते हैं तो मैं आत्मा, और आत्मा का तो कुछ याद नहीं आया, आत्मा तो अकेली आई अकेली जाना है ना, अकेली आए हैं अकेले जाना है। इसीलिए हमारी बड़ी दीदी जी थे ना, वो कहती थी रोज सवेरे सवेरे 5 केले खाओ, कौन से 5 केले खाओ, अकेले आए हैं अकेले जाना है, अकेले में अकेला होकर अकेले को याद करना है, अकेले में मना एकांत में अकेला होकर, मन से भी अकेला, कोई देदारी नहीं, और अकेले को याद करना, एक बाबा ज्योति बिंदु। और वो स्थिति जब आई तो समझो आत्मा अशरीरी बन गई, तो पहले है देही अभिमानी अवस्था, फिर है विदेही अवस्था, फिर है अशरीरी अवस्था। अशरीरी अवस्था जिसको बाबा कहते हैं कि अब योग में जब बैठते ये देह एकदम भूल जाए, इतने हल्के अपने आप को महसूस करो, ये सब जैसे जंक निकल गया, कचरा निकल गया, सब खोट निकल गई, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा। इसके लिए बाबा कहते हैं अपना अनादि और आदि स्वरूप बुद्धि में हो, क्योंकि हमारी योग की यात्रा ही है। योग की यात्रा का लक्ष्य क्या है? योग की यात्रा का लक्ष्य यही है ना कि जो हमारा अनादि आदि स्वरूप है उस स्वरूप तक पहुंचना, घर जाना है और नई दुनिया में आना है। तो घर जाना है माना अनादि स्वरूप, और नई दुनिया में आना माना आदि स्वरूप, देवता स्वरूप। तो इसीलिए ये अभ्यास बाबा हमें सिखाते हैं, यही याद की यात्रा है। हम बैठे एक जगह है लेकिन हम यात्रा पर है। फिर उसके बाद बाबा क्या कहते हैं कि अब डबल लाइट बनना है। तो डबल लाइट का अर्थ क्या है? जो किचरा है, एक्स्ट्रा माल है, वो सब निकालना है ना? तो हम बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। मैं आसाम में गई थी, आसाम में बहुत रिफाइनरीज है, वहाँ क्रूड ऑयल निकलता है, तेल निकलता है, तेल के कुएं ना, तो वहाँ तेल निकलता है। तो वो तेल जो जमीन से निकलता है ना, वो बहुत ऐसे काला 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 होता है, बहुत काला, एकदम बांस भी आती है। तो वो अब उसको कैसे रिफाइन करते हैं, और रिफाइन इतने तक करते हैं कि वो हवाई जहाज का पेट्रोल भी बन सकता है। तो रिफाइन करने के लिए उसकी उनकी कई साधन है, कई मशीनें हैं। तो पहला पहला क्या निकलता है, जब वो क्रूड ऑयल को वो मशीन में डालते हैं तो जो एकदम काला काला है ना वो निकलता है, और उसको फेंकते नहीं है, वो डामर बन जाता है। डामर लगाते हैं रास्ते पर, वो डामर में काम आता है, वो तो काम आता है, लेकिन मतलब वो जो उनका लक्ष्य है कि वो हवाई जहाज का पेट्रोल बनाना है। और इतना काला, इतना भारी, इतना किचरा भरा हुआ, तो वो निकाला और वो डामर में यूज होता है। फिर थोड़ा अब थोड़ा हल्का हुआ तो फिर दूसरी चीज क्या निकलती है, वैक्स निकलती है। वैक्स को क्या बोलते हैं, मोम, मोम। वो मोम निकलता है, वो भी चिकना चिकना होता है ना, क्योंकि बहुत चिकना होता है जो नीचे से तेल निकलता है, तो वो मोम निकलता है, और वो मोम से मोमबत्तियां बनाते हैं। फिर थोड़ा और आगे वो निकलता है तो और तेल किचड़ा निकलता है, तो फिर वो साबुन में काम आता है। साबुन में भी तो तेल चाहिए ना, तो वो सब। तो इसी प्रकार से 14 या 16 धातु निकले, धीरे 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 निकलते गए निकलते गए, और आखिर में, क्योंकि इतना टाइम तो था नहीं जो एक एक चीज देखे, तो आखिर में हमने कहा जो आखिर में होता क्या निकलता, तो बोला हवाई जहाज का पेट्रोल। क्योंकि हवाई जहाज में हजारों वो लीटर पेट्रोल चाहिए ना, तभी भारत से अमेरिका जाना है नॉन स्टॉप फ्लाइट, तो कितना पेट्रोल चाहिए। तो वो पेट्रोल भारी नहीं होता, बिल्कुल हल्का, जैसे पानी से भी हल्का, पानी भी भारी लगता है जब हाथ में उठाओ, पानी थोड़ा तो वजन लगता है, वो पानी से भी हल्का, बिल्कुल जैसे हवा की तरह, ऐसा पेट्रोल होता है वो, एकदम साफ शुद्ध। और देखो वो डबल लाइट हो जाता है, हवाई जहाज को उड़ाता है। तो हमें भी तो उड़ना है ना, पहले इतना भारी थे तो बाबा कहते थे चलना है, फिर धीरे धीरे बाबा ने कहा चलना नहीं है, अभी हाई जंप, दौड़ना है, दौड़ना है। तो थोड़ा हल्के होंगे तभी तो दौड़ेंगे ना, भारी होंगे तो चल तो सकते हैं पर दौड़ नहीं सकते ना, हाँफते रहेंगे। लेकिन थोड़े हल्के हुए तो फिर दौड़ते हैं। फिर बोला बाबा ने हाई जंप देना है, एकदम छलांग, छलांग लगाना है। तो हाई जंप दिया, फिर उसके बाद बाबा ने क्या कहा, उड़ना है। तो उड़ने के लिए तो बहुत हल्का बनना है, हल्का बनेंगे तभी तो उड़ सकेंगे ना। इतना बड़ा हवाई जहाज पर उड़ता है क्योंकि उसको शक्ति मिलती है। तो बाबा भी हमको शक्ति देते हैं, बाबा की याद की शक्ति से हम सब किचरा अपना निकालते हैं और धीरे 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 डबल लाइट बनते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुमको संपूर्ण बनना है। बाबा दो शब्द यूज करते हैं, संपूर्ण भी बनना है और संपन्न भी बनना है। दोनों में क्या अंतर है, संपन्न भी और संपूर्ण भी, दोनों में अंतर क्या है? तो बाबा मिसाल देते हैं, जैसे देवताओं की महिमा क्या गाते हैं, सर्व गुण संपन्न। तो किसमें बनना है संपन्न? गुणों में संपन्न बनना है। फिर 16 कला संपूर्ण, तो संपूर्ण किसमें बनना है? कलाओं में संपूर्ण। तो कलाओं का मतलब क्या है? पवित्रता की कलाएं। 16 दिन में चंद्रमा पूर्ण बनता है और 16 दिन के अंदर वो पूर्ण चंद्रमा अमावस्या बन जाता है। यानी 16 दिन लगते ना, इसीलिए 16 आना हमारे भारत की करेंसी थी। 16 आना माना 100%, 16 आना सच कहते हैं। तो इसीलिए 16 का बड़ा महत्व है। 16 कला संपूर्ण माना कंप्लीट पवित्रता। तो जैसे चंद्रमा होता है फुल मून पूनम की रात, इतना पूरा होता है तो उसके अंदर जो लाइट होती है वो पूर्ण लाइट होती है, और दिनों में पूर्ण लाइट नहीं होती है। और पूर्ण लाइट माना संपन्न, 16 कला हो गया। सूरज की कलाएं नहीं होती, चंद्रमा की कलाएं होती, बाबा ने कहा ना। तो संपन्न भी है, लाइट में संपन्न और आकार में संपूर्ण। आकार गोलाकार, बाकी कोई भी दिन एकदम गोलाकार नहीं होता है। भले फिर 14 की रात है तो भी थोड़ा कम होगा, पर पूनम आ गया 15, वो पूनम की रात एकदम फुल मून, फिर उसके बाद एक कम हुआ तो फिर धीरे 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 लाइट भी कम होने लगती है और उसका गोलाकार भी कम होने लगता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें संपन्न भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है, सर्व गुणों में संपन्न, आदि गुण अनादि गुण। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा वो गुणों की लिस्ट अपने पास रखो और देखो मेरे अंदर कौन से गुण की कमी है। अंतर्मुखता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता, निर्भयता, सरलता, कितने गुण हैं? यहाँ बाहर लगा हुआ है नोटिस बोर्ड पर 36 गुण बताए। तो ये गुणों की लिस्ट से अपने अपने आप को भेंट करना, मेरे अंदर कौन से गुण की कमी है और वो गुण की जो कमी है वो भरनी है, उसके लिए जो उसका ऑपोजिट है वो निकालना है। संतुष्टता एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन उसका ऑपोजिट क्या है? सदा अतृप्त रहना। तो संतुष्ट रहना है, अतृप्त नहीं, मैं भरपूर हूं भरपूर हूं। अशांत और शांत, तो मैं अशांत नहीं हूं शांत हूं, क्योंकि यह तो सारी मन की स्थिति, अंदर से निकलना है ना। बना हुआ तो हूं मैं, मूर्ति तो हूं, लेकिन जो बाहर का जो एक्स्ट्रा सामान एक्स्ट्रा है वो निकालना है। तो बाबा कहते जब योग में बैठते ये तो नहीं कहते मैं अशांत नहीं हूं, मैं अशांत नहीं हूं, ऐसा नहीं कहते ना। क्या कहते? मैं शांत स्वरूप हूं, मैं दुखी नहीं हूं, दुखी नहीं हूं। तो ये दुखी नहीं हूं, अशांत नहीं हूं, तो पहले दुख को याद करना है ना। वो जोक सुनाते, हमारी मनोहर दादी बहुत सुनाती थी, मनोहर दादी ये जोक सुनाती थी। किसी कोई व्यक्ति गुरु के पास गया, गुरु जी मेरा मेरा बहुत व्यर्थ संकल्प, मेरा मन बहुत भटकता है, बहुत भटकता है। तो गुरु ने उसको मंत्र दिया और मंत्र देकर क्या कहा, कि देखो ये जब मंत्र जाप करोगे ना ये बहुत चमत्कार करेगा मंत्र। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब ये मंत्र जाप करो तो बंदर याद नहीं आना चाहिए, समझा? बंदर याद नहीं आना चाहिए, क्योंकि बंदर याद आया ना तो मंत्र काम नहीं करेगा। अब उसने कहा बंदर याद नहीं आना चाहिए, बंदर याद नहीं आना चाहिए, तो पहले क्या होता था? हाँ, बंदर ही सामने आया, क्योंकि ये याद नहीं करना है। तो याद नहीं करना है तो पहले तो याद किया ना, अगर याद करना ही नहीं है तो सोचना भी क्यों है? तो मैं अशांत नहीं हूँ, मैं अशांत नहीं हूँ, ये नहीं हम कहते। जब कमेंट्री कराते हैं ना तो ये बहुत ध्यान रखते हैं, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं अशांत नहीं हूँ, हाँ मैं ये नहीं हूँ, नहीं मैं कौन हूँ। दादी जानकी ये नशे से कहती थी, जब ओम शांति कहती थी तो क्या कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, ये नहीं मुझे क्या करना है। तो ऑटोमेटिकली जो नहीं करना है वो तो नहीं करना है, मुझे पवित्र बनना है। एक होता है पवित्र बनना है, दूसरा होता है मुझे अपवित्र नहीं बनना है। तो अपवित्र नहीं बनना है और पवित्र बनना है, दोनों में अंतर है ना कि नहीं है? बहुत अंतर है। पवित्र बनना है, मुझे दुखी नहीं होना है, ये नहीं मैं तो सुखी आत्मा हूं, मैं तो बहुत संतुष्ट आत्मा हूं। तो जो पॉजिटिव विचार है वो जैसे मन में लाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्थिति बनती है ना। हम यही बताते हैं, मैं बहुत अशांत हूँ, मैं बहुत अशांत हूँ, भगवान मुझे शांति दो। अब अशांति कैसे जाएगी, भगवान भी शांति नहीं दे सकेगा। लेकिन मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर शिव पिता की संतान हूँ, शांति धाम की वासी हूँ, इसलिए तीन बार ओम शांति कहा तो वो शांति का अनुभव उसी सेकेंड होगा। मैं देह नहीं हूं ऐसे नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं इस संसार का रहवासी नहीं हूं, ये नहीं मैं आत्मा परम धाम की रहवासी। ये पॉजिटिव विचार है, मेरा देहधारियों से कोई संबंध नहीं है, ऐसे नहीं, मेरा सब संबंध शिव बाबा के साथ है। तो जैसे ही हमने इस प्रकार से सोचा तो देह का संबंध तो कट ही गया ना। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को वो ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशंस कहते हैं उसको, हमें देते हैं ताकि हम उस स्थिति तक पहुंचे और जो एक्स्ट्रा माल है वो सब निकल जाए। मैं तो शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं, तो जो सोचेंगे वही अनुभव करेंगे। मन जो सोचता है वही अनुभव करता है, इसीलिए क्या क्या कहा जाता है, आप अपना मन हो, मन आपका दुश्मन नहीं है, मन आपका मित्र है, क्योंकि उस मन में परमात्मा की सोच लानी है तो परमात्मा तक पहुंचेगा। मन को मारना नहीं है लेकिन क्या करना है, मोड़ना है, शिव बाबा की तरफ मोड़ना है, दमन नहीं करना है, अमन करना है, अंतर है ना। मन तो सब में लगता है, अमन में भी, दमन में भी, सुमन में भी, मन तो मन को क्या करना है, सुमन करना है, सुंदर विचार मन में लाना है, वो भी योग है। तो जिसके बारे में विचार लाते उसके साथ योग है, योग मना मिलना। बाबा ने उस दिन चार बातें कही थी, टाइम टेबल बनाओ, मन का टाइम टेबल बनाओ, तो चार बातें उसमें कही थी, याद है अव्यक्त मुरली ने? अभी वो आपका एक टॉपिक भी है, राजू भाई लेने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है? तो एक है बाबा से रू रिहान जी, मिलन, तो बाबा से रू रिहान मिलन हो गया। फिर दूसरा है वर्णन, ज्ञान सुनाना। तीसरा है मगन, और चौथा है बताया लगन। तो लगन, मगन, वर्णन और मिलन, ये चार बातों में अपना सारा दिन बिताना है, वो अपने मन का टाइम टेबल बनाना है। और वो टाइम टेबल अगर बना सके, उसको सफल कर सके, तो आपका सच्चा योगी जीवन हो गया। तो यही अनुभव हम सबको करना है। तो डबल लाइट बनेंगे तो संपन्न संपूर्ण बनेंगे, सब किचरा निकल जाएगा, खामियां निकल गई, कमियां कमजोरियां खत्म हो गई, तब बाप समान बनेंगे। फिर बाबा कहते फॉलो फादर, तो फॉलो फादर का मतलब क्या है? बाबा के कदम पर कदम रखो का मतलब क्या है? बाबा ने उसका भी अर्थ बताया था कि जो भी कर्म करो, जो भी बोलो, जो भी सोचो, उसके पहले ये सोचो बाबा ऐसे करेंगे, बाबा ऐसे बोलेंगे, बाबा ऐसे सोचेंगे। अगर बाबा ऐसे नहीं सोचते तो मुझे भी नहीं सोचना है। इसीलिए तो ऐसे बाप समान बनेंगे, और फिर बाप बाबा क्या बन गए? ब्रह्मा बाबा फरिश्ता। तो ब्राह्मण से फिर क्या बनना है? फरिश्ता। और फरिश्ता से फिर देवता। हाँ, तो ये है यात्रा। तो ऐसी यात्रा हम सबको करनी है। तो यहाँ से सब फरिश्ता बनकर जाएंगे ना, डबल लाइट फरिश्ता बन के जाएंगे, तो जहाँ भी जाएं वहाँ आपका चेहरा और चलन सेवा करे। और लोग कहे ये तो मधुबन क्या गया, एकदम बदल के आया। हाँ, बदल के आया। चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सिलू दीदी जी, सभी दो हाथ की ताली बजा के। क्योंकि कोई भी फाउंडेशन पक्का होता है तो इमारत बहुत अच्छी बनती है। पट्टी की शुरुआत ही ऐसी की गई कि हमारी मनसा तैयार हो गई पट्टी करने के लिए, है ना। तो दीदी का फिर से दिल से शुक्रिया है, शुक्रिया है। अभी आपके स्वागत में देखो मधुर वाणी ग्रुप, हमारे सतीश भाई जी, निरंजन भाई जी और हल्दर भाई जी आपको आमंत्रित करते हैं कि हमारे कासगंज से पधारे हुए पूरा ग्रुप का बहुत प्यार से स्वागत कीजिए कि वो उड़ जाए। तो हम मधुर वाणी ग्रुप का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है।
ओम शांति,
ओम शांति।
कवि कहो, साधु संत कहो, वरदान मिला कासगंज को। कितने विभूतियां इस धरती पर जन्म लिए हैं भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए, और विशेष हमारे सतीश भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप हमारे आदर्श कहें, प्रेरणा स्रोत कहें, मार्गदर्शक कहें, सभी बातों से आगे बढ़ाते हैं। हमको सौभाग्य है कि उनकी भाषा, उनकी लेखनी, उनकी विचारधारा उच्च कोटि के हैं। जैसा संग बाबा कहते ना, वैसा रंग। वो आप समान बनाने में तत्पर हैं, इसलिए फिर से जोरदार तालियां सतीश भाई के लिए।
ओम शांति।
ओम शांति।
सरोज दीदी तो यहाँ सामने नहीं बैठी हैं, आई नहीं है अभी तक, लेकिन जब गीत लिखता हूँ तो सामने इमर्ज करके उनको सामने रख करके लिखते हैं। सवेरे गीत लिखा तो पूरा बादल 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 भरे थे, और तभी मैंने आप सबको इमर्ज कर लिया कि बादलों के बीच में आप फरिश्ते आए। तो एक फरिश्तों का अभिनंदन हो रहा है, बहुत अच्छा समय है, मम्मा के दिन पर आए हैं, मम्मा की मीठी यादें लाए हैं और यादों में समाये हैं। और सरोज दीदी भी हमारे साथ में, हमारी बड़ी बहनें, सब सुमन बहन वगैरह सब बैठी हैं। मैं इनको बहुत दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत ढेर सारी बधाइयां देता हूँ। एक बार ताली बजा के सब स्वागत करें।
कासगंज है खास आया मधुबन में तप करने को, माँ के दिन पर आ पाए भट्टी से शक्ति भरने को, भट्टी से शक्ति भरने को। कासगंज है खास आया मधुबन में तप करने को, माँ के दिन पर आ पाए भट्टी से शक्ति भरने को, भट्टी से शक्ति भरने को।
आपकी तालियां हो सकती हैं, बहुत खुशी की पल है।
मम्मा बाबा दीदी दादियाँ सबने यहाँ तपस्या की, तप के बल से सभी मिटा दी सबकी जो समस्या थी।
14 बरस वाली भट्टी,
14 बरस वाली भट्टी
चली
यादगार अब बनने को, माँ के दिन पर आ पाए भट्टी से शक्ति भरने को, भट्टी से शक्ति भरने को। कासगंज है खास आया मधुबन में तप करने को, माँ के दिन पर आ पाए भट्टी से शक्ति भरने को, भट्टी से शक्ति भरने को।
मधुबन में एक मुकाम राजू भाई जी ने ग्रहण किया और बहुत खुशी होती है कि उनके साथ में सबका नाम लिया जाता है।
सरोज दीदी राजू भाई जी की बहन गुणों की धनी, आई राजू भाई जी को यहाँ लाने के निमित्त बनी, बजे तालियां दीदी के लिए, बजे तालियां दीदी के लिए। नाम न ले जो रुकने को, माँ के दिन पर आ पाए भट्टी से शक्ति भरने को, भट्टी से शक्ति भरने को। कासगंज है खास आया मधुबन में तप करने को, माँ के दिन पर आ पाए भट्टी से शक्ति भरने को, भट्टी से शक्ति भरने को। आंगन में बाबा मम्मा स्वागत को बाहें बढ़ाए हैं, आप फरिश्तों के स्वागत को बादल भी निहराए हैं, हम भी मधुर वाणी में आए, मधुर वाणी में आए आपका स्वागत करने को, माँ के दिन पर आ पाए भट्टी से शक्ति भरने को, भट्टी से शक्ति भरने को। कासगंज है खास आया मधुबन में तप करने को, माँ के दिन पर आ पाए भट्टी से शक्ति भरने को, भट्टी से शक्ति भरने को, मधुबन में तप भरने को, भट्टी से शक्ति भरने को, मधुबन में तप करने को, भट्टी से शक्ति भरने को, मधुबन में तप करने को, भट्टी से शक्ति भरने को, मधुबन में तप करने को।
जोरदार फिर से तालियां हो जाए मधुर वाणी ग्रुप के लिए।